कि तू पहचान कर ले कर्म कि तू पहचान कर ले कर्म कि तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान
पिछले 3-4 दिनों से आप सभी इस शांति वन के सुंदर परिसर में रहकर यहां पर सुबह से लेकर रात्रि तक बहुत कुछ सुन रहे हैं। राजयोग के विषय में काफी कुछ बातें आपने सुनी, आत्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना, कैसे परमात्मा से योग लगाना होता है वो भी पता चला, इस राजयोग से क्या जीवन में लाभ मिलते हैं वो भी जाना, समय की पहचान क्या है वह भी आपको मिली। अभी जो हम विषय लेने जा रहे हैं, वह है कर्म की पहचान। कर्म की गति को हम कैसे समझें, क्योंकि राजयोग में जितना ही आत्मा का महत्व है, परमात्मा का महत्व है, समय का महत्व है, उतना ही कर्म का भी महत्व है। जब समय के बारे में जाना कि अभी कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम युग है, अब समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना होगा। ये न हो जो समय हमें बदले पर हम समय को बदले। हमारे परिवर्तन से समय का परिवर्तन आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? कर्म को पहचानना होगा। तो अभी बहुत सुंदर गीत सुना, कर ले कर्म की तू पहचान, तेरे कर्म हो ऊंच और महान। तो जितना ही हमने आत्मा, परमात्मा और समय को पहचाना, उतना ही अब कर्म को पहचानने की आवश्यकता है। कर्म क्या है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म की गति क्या है? किस कर्म का क्या फल होता है? और फिर अब हमें क्या करना है? वैसे बहुत एक अच्छी कहावत है कि कर्म की गति बलवान है, कर्म की गति टली नाही टले। अर्थात जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलेगा, वो टल नहीं सकता। लेकिन वो फल किस रूप में मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितनी संख्या में मिलेगा, ये तुरंत पता नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है कर्म की गति बलवान है। जो मैंने कर्म किया है मुझे उसका फल जरूर मिलेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो करेगा वही भरेगा। ये नहीं कि करेगा कोई और भरेगा कोई और। मैंने किया है तो मुझे ही वह फल पाना है। दुनिया में लोग बीज बोते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही फल खाए, दूसरे खाते हैं। आम का बीज कोई बोता है तो पहले जमाने में कहा जाता था दादा बोए और पोता खाए, क्योंकि बहुत समय के बाद फल निकलता था। तो दादा के जमाने में जिसने बीज बोया उसके आयु में तो फल निकलता ही नहीं था, पोतरे के जीवन में फल मिलता था। एक मिसाल देते हैं कि एक दादा, एक बूढ़ा आदमी बीज डाल रहा था आम का, तो लोगों ने उसे कहा कि अरे भाई तुम इतनी आयु में बीज डाल रहे हो आम का, तो कब तुम इसका फल खाओगे, ये तो बहुत समय के बाद फल निकलेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भले नहीं खाऊं पर मेरे पोतरे दोतरे तो खाएंगे ना, मेरे दादा ने जो बीज डाला था वो मैं खा रहा हूं, ये देखो पेड़ लगे हुए, ये मेरे दादाजी ने बोए थे बीज, तो मैं उनका फल खा रहा हूं, और मैं जो बीज बोऊंगा वो मेरे पोतरे दोतरे खाएंगे, इसमें क्या है। तो वो बीज तो ठीक है कोई बोए और कोई खाए, परंतु कर्म का बीज जिसने बोया है उसी को ही खाना है और कोई नहीं खाएगा, ये कर्म की गति है। परंतु एक बात जरूर है कि जैसा बीज वैसा फल। आप आम का बीज बोएंगे तो ये नहीं अपेक्षा रख सकते कि हमें अनार मिले, अमरूद मिले, केला मिले, आम ही मिलेगा। तो कर्म की गति के लिए भी यही है, आप अगर किसी को दुख दोगे तो दुख ही मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। तो अगर आप सुख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि हम सुख किसको दें और उससे हमें दुख मिले, या हम किसको दुख दें और हमको उससे सुख मिले, या सुख की अपेक्षा करें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कर्म की गति है। परंतु थोड़ा सा हम इससे हटकर कुछ सोचें कि न्याय तो यही है कि जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। अगर किसी ने किसकी हत्या की, माना उसकी जान ले ली, मार डाला, तो न्याय क्या कहता है, उसको फांसी की सजा मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी, जीवन का बदला जीवन, किसी का जीवन लिया तो उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा, देना पड़ेगा अपना भी जीवन, क्योंकि किसी का जीवन लिया। तो किसी को भी किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है, ये न्याय कहता है। अब इसको थोड़ा और रूप से हम समझेंगे, क्योंकि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसकी सजा है फांसी या उम्र कैद। परंतु कई बार हम देखते हैं हमारे सिपाही जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, दुश्मनों का सामना करते हैं, और मान लो उनके सामने दुश्मन आते हैं, उस समय अगर ये सोचने लगे कि अगर हम मारेंगे तो ये पाप लगेगा, हमको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, ये सोच वहां नहीं चल सकती। वहां तो उनको मारना ही होगा, क्योंकि सामने दुश्मन का वार है और उनको अपने देश के नागरिकों की रक्षा करनी है। अगर वो उस समय सोच ले कि गोली चलाना, हत्या करना, मारना ये पाप है, और गोली न चलाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो उतना बड़ा पाप बन जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या है और उसकी रक्षा के लिए वो बॉर्डर पर खड़ा है, देश की रक्षा है। तो वहां उसे उस रूप से नहीं समझना होगा, वहां तो उसको गोली चलानी पड़ेगी। और कई बार इतने बहादुर निकलते हैं हमारे सिपाही जो एक एक 10 को मार डालता है, दुश्मनों को खदेड़ देता है, मार डालता है, तो उसको देखो परमवीर चक्र मिलता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा क्या मिलता है, 26 जनवरी को परमवीर चक्र मिलता है, कई बड़े बड़े पदक उनको मिलते हैं, क्योंकि बहादुरी दिखाई। तो बहादुरी में क्या किया, किनको मारा ना, कोई तो खुद भी उसमें मर जाते हैं तो उनके मरने के उपरांत यानी उनके पत्नी को या माँ को या बेटी को वह पदक प्रदान करते हैं। तो कर्म और उसका फल ये तो निश्चित है, लेकिन कर्म और फल के बीच में जो अंतराल है उसको भी समझना होगा। हम केवल उस कर्म के मोटे रूप को न देखें। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम बीज डालते हैं धरती में, लेकिन धरती में डाला हुआ बीज तब फल देगा जब धरती भी उपजाऊ हो। अब धरती में हमने हल चलाया ही नहीं है, खाद डाली ही नहीं है, पानी डाला ही नहीं है, उसको सिंचाई नहीं है, एकदम सूखी बंजर पथरीली जमीन है, रेत है, और हम सोचे कि हम बीज डालें तो फल मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा फल, पहले तो धरनी को तैयार करना पड़ेगा। धरनी तैयार करो तब फिर बीज डालो तो फिर फल मिलेगा। तो धरनी पहले तैयार चाहिए, बीज कितना भी अच्छा हो धरनी तैयार नहीं है तो बीज फल नहीं देगा। अब चलो धरनी भी तैयार करो और फिर बीज डालो, परंतु उसके बाद समय प्रति समय उसमें पानी भी डालना पड़ेगा। अगर पानी नहीं डाला तो क्या होगा? वो बीज सूख जाएगा, चाहे धरनी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं थी। तो बीच बीच में जल से उसे सींचना भी पड़ेगा, ये भी जरूरी है। फिर और आगे देखो, कई बार चलो जल से सींचते भी हैं, अंकुर भी निकलते हैं, बीज से पत्ते भी निकलने लगते हैं, परंतु उसकी रक्षा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो क्या होता है? जो पत्ते निकलते हैं उनको जानवर जीव जंतु पक्षी सब खा जाते हैं, खा गए तो खत्म। उनकी रक्षा भी करनी होती है, फेंसिंग करते हैं, जाली लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि कोई ऐसे जीव जंतु जानवर उसको खाए नहीं, यानी उसकी रक्षा करते हैं। तो रक्षा करना भी जरूरी है, तब फल निकलेगा। चलो रक्षा भी की और आगे बढ़ो, जब फल निकलना शुरू होता है तो थोड़ा धीरज तो रखना पड़ता है ना कि फल पके। कहा जाता ना जो देर से पके वो मीठा होता है, जो पेड़ पर फल पकता है वो मीठा फल होता है। अब कच्चे फल कोई तोड़ दिया तो क्या होगा? लगा बहुत अच्छा अंगूर निकला है, बहुत अच्छा है, हाँ एकदम से तोड़ दिया। अब कच्चा मुंह में डालेंगे तो क्या होगा? आम भी एकदम कच्चा है, अभी तो कड़वा कड़वा लगेगा, उसको पकने तो दो। कहा जाता धीरज का फल मीठा है। तो पकने उसको दिया ही नहीं, ऐसे ही खा गए तो फेंकना पड़ता है, वो कोई काम का नहीं। और फिर चलो मान लो धीरज भी रखा और फल पक के तैयार हो गया तो फिर खाओ, मना थोड़ी है, वो आपका ही बोया हुआ बीज है, जरूर खाओ, खाओ और खिलाओ, जिससे खुद भी सुख पाओ और दूसरों को भी सुख दो। पर कई लोग होते हैं ना, घर में फल बहुत होते हैं पर खाते ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है, तो न खाने की फुर्सत है न खिलाने की फुर्सत है। कई बार पड़ा ही रहते हैं, सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, बांस मारते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला जो खाएं। होता है ना, फ्रिज में पड़े हैं, देखा ही नहीं, पड़े हैं, और फिर फेंकना पड़ता है क्योंकि वो खा नहीं सकते। तो इतनी मेहनत भी की और फिर न खाया न खिलाया तो भी क्या हुआ? वो फल वेस्ट चला गया। अब हम इसको थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जीवन एक फल के रूप में भी है। जो मैंने पास्ट में पूर्व में कर्म किए हैं उन कर्मों का ये नतीजा है जो वर्तमान का फल है। अगर मान लो मैं स्वस्थ हूँ, कोई इस आयु में भी रोग नहीं है, तो जरूर है मैंने अपने तन पर ध्यान दिया है, ठीक खुराक खाई है, कसरत की है, माना अपने शरीर पर ध्यान दिया है, इसलिए तन अभी भी तंदुरुस्त है। मन में शांति है क्योंकि मैंने उसका भी ध्यान रखा है कि कोई टेंशन ना आने दे, कोई कष्ट या चिंता ये सब में हम न पड़े, तो मन को हम शांत रखते आए। और धन की भी कमी नहीं है तो मेहनत की है, कोई बड़े पद पर ऐसे ही तो नहीं आता है, बड़ी मेहनत करता होगा, पढ़ाई करके कोई डिग्री लेता है तो देखो कितना बड़ा उसे पद मिलता है, तो बिना मेहनत के थोड़ी उसने पाया, कर्म किया होगा ना। तो जैसा कर्म वैसा फल, तो वर्तमान जो मेरा स्वरूप है ये फल के रूप में है, पूर्व का, चाहे इस जन्म के कर्म का फल चाहे पूर्व के जन्मों का कर्म का भी फल है। ये जरूरी नहीं है एक जन्म का उसी जन्म में ही फल मिलता है, कई जन्मों के पिछले के कर्मों का भी फल अभी हम खा सकते हैं, और अभी जो हम बोते हैं वो कई जन्म तक खा सकते हैं। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं वो छोटी सी क्रिया है, लेकिन उस क्रिया का जो असर है वो कितनी देर तक टिकता है वो मदार है कि वो क्रिया किसके आधार पर की या कैसे की। मानो हम उंगली उठाते हैं, ये भी एक कर्म है, पर ये उंगली उठा करके मैं ऐसे हवा में खींचती हूँ, ऐसे ही करती हूँ, तो हवा में भी तो एक लकीर खींच जाएगी, पर तो दिखाई नहीं देगी, पता भी नहीं चलेगा कि एक लकीर खींच भी गई और उसी वक्त मिट भी गई, खींच भी गई मिट भी गई, पता ही नहीं चला, पर कर्म तो हुआ ना। अब वही लकीर मैं उंगली से पानी पर खींचती हूँ तो क्या होगा, कुछ देर के लिए वो लकीर दिखाई देगी, है ना, ऐसे एक क्षण के लिए, और फिर मिट जाएगी क्योंकि पानी तरल पदार्थ है तो वो मिट जाएगी लकीर। लेकिन वही लकीर मैं रेत पर खींचती हूँ, सागर के किनारे पर बच्चे रेत पर कुछ न कुछ चित्र बनाते रहते हैं, तो रेत पर खींचती हूँ तो थोड़े समय के लिए वो लकीर टिकी रहेगी, कोई पांव रखेगा फिर मिट जाएगी। पर वही लकीर मैं किसी नुकीली चीज को पकड़कर, चाकू या छुरी या कोई ऐसी नोक वाली चीज हाथ में पकड़कर और पत्थर पर खींचती हूँ तो क्या होगा, हा? पत्थर पर लकीर कहा जाता ना, वो अमिट हो जाएगी, सालों साल वो चलती रहेगी। तो क्रिया वही है लेकिन उसका परिणाम बदल जाता है। तो समय, स्थान, वृत्ति, दृष्टि, स्थिति या जिसके प्रति, ये सब के अनुसार भी कर्म का फल बदल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। और मान लो कई कहते हैं कि चलो मैं किसी को दुख नहीं देता हूं, तो मुझे लोग दुख क्यों देते हैं। पर यहां थोड़ा समझना होगा क्योंकि कर्म की गति तो यही है कि मैं किसको दुख दूंगा तो मुझे दुख मिलेगा, पर मैं किसको दुख नहीं दे रहा हूं और वो मुझे दुख दे रहा है, तो ये तो न्याय नहीं है। पर न्याय इसको इस रूप में हम समझते हैं कि वो आपको दुख दे नहीं सकता, आप जबरदस्ती लेते हो इसीलिए दुख महसूस होता है। आपको सुबह बताया गया होगा कि हम जबरदस्ती दुख ले लेते हैं। किसने मुझे गाली दी, चलो गाली दी कहाँ लगी, पर हम दुखी हो जाते, इसने मुझे गाली क्यों दी, ये क्या समझता है, मैं भी इसका बदला लूंगा, मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं भी कम हूं क्या, तो अभिमान आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, नफरत पैदा हो जाती है। अब ये सब जो मेरे अंदर आए उसके कारण मुझे दुख हुआ, न कि उसने मुझे कुछ कहा इसका दुख हुआ, मैं नहीं लू दुख, चलो दो गाली दी तो लगी कहां, लगी क्या, किसने मुझे कहा तुम पागल हो तो मैं बन गई क्या, कहने से हो जाती हूँ क्या, परंतु मैं उसको क्यों स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि अभिमान है मेरे अंदर। अभिमान अपमान को लाता है, जहाँ किसी में अभिमान होगा उसको अपमान भी जल्दी लगता है, तो इसीलिए दुख ले लिया। तो इसलिए दुख लो ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूं कि हाँ मैं किसी को दुख नहीं देती हूँ तो लोग मुझे दुख क्यों देते हैं। कोई किसी को दुख जबरदस्ती नहीं दे सकता। फिर दूसरी बात, कई कहते हैं कि बहन जी मेरे अंदर उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, मेरे अंदर में उसके लिए तो शुभ भावना है, अच्छे विचार है, वो सुखी रहे, मैं चाहती यही हूँ। लेकिन वो जो है ना, वो सदा ऐसे ही सोचती है कि मैं उसको दुख दे रही हूँ। बहन जी मेरे मन में नहीं है उसके लिए कुछ भी बुरी भावना, पर ऐसे क्यों सोचती है वो? सबको यही कहती है कि मैं दुख दे रही हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं उसको कहती हूँ। अब ये जहाँ बात आती है तो उसमें भी दुखी मत हो जाओ कि वो ऐसे क्यों सोचती है कि मैं दुख दे रही हूँ या मैं दुख दे रहा हूँ। ये उसका अपना कर्म है जो उसको दुख दे रहा है। और कौन सा वो कर्म है जिससे उसको दुख मिल रहा है? उसके अंदर में ईर्ष्या है या शक है, अनुमान है। ये शक, अनुमान, ईर्ष्या, ये सारी जो बातें हैं ना, वहम, ये सब ऐसे मनोरोग हैं जिससे मनुष्य अपने आप को दुखी करता है, दूसरा उसको दुख नहीं देता है। और जब तक इस वहम, अनुमान, शक, इन सब बातों को खुद न निकाले, तब तक वो अपने आप को दुखी करता रहेगा। तो है उसका अपना ही कर्म, अपनी सोच, और उसमें वो दुखी होता है। और हम हमारे लिए वो समझता है कि हम उसको दुख देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो हम शुभ काम भावना ही देंगे, शुभ कामना ही देंगे कि भगवान ही उनको सुमति देवे। हम तो उनको समझा सकते हैं, लेकिन समझने वाले ही नहीं है तो हम और क्या कर सकते हैं? अच्छे विचार उनको मन में देंगे ताकि वो भी अपने मन में अच्छे विचार लाए, और क्या कर सकते हैं? अब ये सारी बातों को समझना माना कर्म की गति को समझना। कई कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब पाप के खाते में जाता है। हम मानते हैं जरूर झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, परंतु इसको अगर हम आध्यात्मिक रूप में देखें तो कई लोग कहते हैं बहन जी मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो जो व्यक्ति देह अभिमान में है वो झूठ ही बोल रहा है। मैं हूं आत्मा, और क्या हम अपने आप को समझ बैठे हैं? शरीर। और शरीर समझकर अभिमानवश मैं करते रहते हैं तो ये झूठ है या सच है? हूं मैं आत्मा, एक ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं शांत स्वरूप, मैं सुख स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, और मैं यही सोचूंगी मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो बहुत अशांत हूं, मैं तो फलाना हूं, मैं तो ये हूं, वो सब झूठ के खाते में जाता है। कोई कहे कि मैं कभी किसी की चीज नहीं उठाता, चोरी नहीं करता, लेकिन जो मेरे पास चीजें हैं जिसका मैं मालिक हूं उसमें भी मोह रखना, ये भी चोरी है। अब कहेंगे ये कैसे चोरी है, ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, पाया है। लेकिन ये चोरी क्यों है? क्योंकि जो कुछ मेरे पास है ये मेरी चीज तो है ही नहीं। आत्मा इस संसार में आई तो ये चीजें लेकर आई क्या? फिर जब जाएगी तो कुछ लेके जाएगी, तो मेरा कहां से हुआ वो सब मकान, जमीन, जायदाद, ये सब जो कुछ भी है इस प्रकृति के ही है, और प्रकृति को ही वापस मिलना है। तो अगर हम मेरा 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 कहते रहते हैं मोह रख करके, वो चोरी हो जाती और वो पाप बनता है। कोई कहे कि मैं कभी किसी का गला नहीं दबाया, किसी की हत्या नहीं की, हम मान सकते हैं दूसरे की हत्या नहीं की है, मानते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की हत्या करते हैं हम। कैसे करते हैं? मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, अंतरात्मा की आवाज रोकती है, लेकिन फिर भी इंद्रियों के वश होकर के हम कोई ऐसा गलत काम कर लेते हैं और फिर मन खाता है, पश्चाताप होता है, अंदर ही अंदर डरते हैं, दुख के आंसू आते हैं, अंदर ही अंदर मानो रोते ही रहते हैं, अपने आप को पीड़ा कष्ट देते रहते हैं। ये जैसे अपनी आत्मा की हत्या करना है। वैसे आत्मा की हत्या कभी होती नहीं है, आत्महत्या थोड़ी होती है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। जीव हत्या होती है, शरीर की हत्या होती है, आत्मा की तो हत्या होती ही नहीं है। किसी ने किसको मार डाला, मानो चलो किसी को जलाया, आत्मा तो उड़ जाएगी, शरीर जलेगा ना, आत्मा थोड़ी जलेगी। तो कोई अपने आप को भी घासलेट डाल के, केरोसिन डाल के जला देते हैं ना आजकल, बहुत कुछ क्या क्या दुखी होकर के करते हैं, पर आत्मा तो उड़ गई। तो इसीलिए आत्महत्या तो कभी होती नहीं, पर ये आत्महत्या जरूर होती है। कैसे? अंदर ही अंदर जो किया वो गलत किया, फिर नींद उड़ जाएगी, चिंता लगी रहेगी, डर बढ़ता जाएगा, कोई कुछ कह न दे, किसको पता न चले, और अंदर ही अंदर अपने आप का घात करते रहेंगे। तो कई पूछते हैं फिर बहन जी, पाप क्या है? पाप हम किसको कहेंगे, पुण्य किसको कहेंगे, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है? अगर मैंने कोई गलती की तो पश्चाताप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अब इसको भी समझना, माना कर्म की गति को समझना। तो अब हम उस रूप को समझेंगे जो परमात्मा ने हमें समझाया है कि कर्म की गति क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और उन कर्मों का प्रभाव संसार पर कैसे पड़ता है, जिसके आधार से युग बदलते हैं। अभी कौन सा युग चल रहा है दुनिया के हिसाब से, क्या कहेंगे? हाँ, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग माना कलह युग, क्लेश युग, काला युग। तो इस कलह युग में, कलयुग में लोग पाप ही पाप करते रहते हैं। तो पाप की परिभाषा क्या है? कई समझते हैं कि एक के लिए वही कर्म पाप है, दूसरे के लिए वही कर्म पुण्य है। ये भी हो सकता है, बताए ना, हत्या करना पाप है, लेकिन बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए गोली चलाना पाप नहीं है, है ना? तो अंतर क्या पड़ गया? समय, स्थान, स्थिति, वृत्ति का परिवर्तन हो गया। तो पाप की आखिर परिभाषा क्या है? कोई कहे झूठ बोलना पाप है और सच बोलना पुण्य हो गया, पर कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां सच बोलना झूठ से भी बड़ा पाप बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? सच बोलना झूठ से भी बड़ा पाप बन जाएगा। कैसे? छोटा सा मिसाल देते हैं कि एक व्यक्ति रास्ते पर खड़ा है मान लो, और उसने देखा कि एक गाय तोड़ती हुई गई, उसके पास से गुजरकर दाएं तरफ चली गई, भागती गई। फिर देखा कि एक कसाई आया हाथ में छुरा लेकर, वो तो गाय का वध करने लिए तैयार था, और गाय अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। तो वो मेरे से पूछता है, गाय किस ओर गई? अब मैं सच बताऊं या झूठ? मैंने देखा जरूर कि दाएं तरफ गई। अब मैं कहूं मुझे नहीं मालूम, तो ये भी झूठ है। मालूम तो है कि किस तरफ गई, तो सच बताऊं या झूठ? झूठ बोलना तो पाप है ना? परंतु नहीं, आप भले कहो मुझे नहीं मालूम, आप बीच में पड़ो नहीं, भले ये झूठ है आपको पता है, लेकिन कोई भी पाप के काम में मुझे नहीं पड़ना है, इसीलिए न्यूट्रल हो जाओ, आपका पाप नहीं बनेगा, भले झूठ है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर को पता चला, किसी पेशेंट का डायग्नोस किया, बायोप्सी लिया, और पता चला कि उसको कैंसर है, मान लो कई यार दुनिया में तो होता ही रहता। अब वो पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो नहीं है, मुझे ये है तो नहीं। अब डॉक्टर अगर तुरंत उसको कह दे, उसको तैयारी नहीं किया है, और ऐसे ही कह दे, वो पेशेंट उसी समय, वो कैंसर से तो 10 साल के बाद भी मर सकता है, तो उसी समय हार्ट अटैक आ जाएगा और ओम शांति हो जाएगा। तो डॉक्टर उसको उस समय नहीं कह सकता है, वो तैयार करेगा, वो माहौल बनाएगा, पहले घर वालों को बताएगा, उनको समझाएगा, उनको सब तैयार करेगा, फिर उसको धीरे धीरे बताएगा, यानी उसको तैयार करना पड़ेगा। एक डॉक्टर को किसी पेशेंट की मानो उनका ऑपरेशन करना है पर ब्लड है ही नहीं, तो ब्लड है ही नहीं और या हाई ब्लड प्रेशर है, खून की कमी है या शुगर है, तो एकदम से ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन थिएटर पर ही मर जाएगा। पहले उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगा, उसका शुगर डाउन करेगा, हाँ क्या खून चढ़ाना होगा, कई बातें हैं, ये सब उनको करना पड़ेगा। जब नॉर्मल हो जाए फिर ऑपरेशन करो, तब उसमें ताकत आएगी ऑपरेशन सहन करने की भी। तो किसी व्यक्ति की मनस्थिति कैसी है उसको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए झूठ और सच इसमें नहीं चलता। तो झूठ सच की पहचान आध्यात्मिक दृष्टि से है। तो क्या है पाप की पहचान, पाप हम किसको कहते हैं? तो बहुत सुंदर किसी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का जो मूल है, जड़ है, उसका बीज है अभिमान है। और जो भी कर्म हम अभिमान से करते हैं वो पाप बनता जाता है। इसीलिए शिव परमात्मा ने हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि आप ये देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। क्योंकि देह समझने से हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे। द्वापर युग में हम आत्माएं जैसे आई अपने आप को भूल गए और शरीर समझ करके हर कार्य करना शुरू किया और इसको का देह अभिमान शुरू हुआ। और ये देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हसद, जलस, राग, जो भी हम विकृतियां मानते हैं, इन सब की जड़ है इस देह का अभिमान। तो पाप की परिभाषा क्या कहेंगे, जो भी कर्म देह अभिमान से पनपता है और विकारों के वशीभूत है, स्वार्थ से भरा हुआ है, ईश्वर से बेमुख है, वो सब कर्म पाप के खाते में जाता है। कई बार हम कहते हैं भगवान देख रहा है, भगवान से तो डरो, इंसान से भले न डरो, भगवान से तो डरो, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो न्यायकारी है परमात्मा। तो उनसे तो तुम डरो, तुम क्या कर रहे हो समझ ही नहीं रहे हो। तो पाप की परिभाषा बड़ी गहरी है और आज हम देख रहे हैं कि इंसान हर कर्म पाप के खाते में डाल रहा है, क्योंकि उसका हर कर्म देह के अभिमान के वश ही हो रहा है, आत्मा का तो ज्ञान है ही नहीं। काम वासना भी पाप का ही रूप है। कई कहते बहन जी काम वासना न हो तो संसार कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, बाल बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो हम कहते चलो दुनिया में इस समय कलयुग में काम वासना का ही तरीका है रचना रचने का, समझ सकते हैं, सदा ऐसे नहीं था, लेकिन रचना तो इतनी चाहिए नहीं। कितनी रचना चाहिए, दो बच्चे ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, चलो तीन, हाँ पर बच्चे इतने चाहिए नहीं, रचना इतनी चाहिए नहीं, फिर काम वासना किस लिए? समझते अरे यही तो भोजन है दुनिया में, यही समझ, यही भोजन है। और जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इतने संत महात्माएं, सन्यासी, साधु, गुरु, महात्माएं, भारत में कम से कम 1 करोड़ संत महात्माएं होंगे, भारत में कम से कम 1 करोड़ होंगे जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो क्या वो मर जाते हैं क्या? उनका तो जीवन और ही शक्तिशाली हो जाता, क्योंकि काम वासना से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शक्ति नष्ट करते रहते हैं। और कलयुगी दुनिया में तो हम देख रहे हैं, कहा जाता है आप भय बूढ़े तृष्णा भई जवान, शरीर बूढ़ा हो गया है पर तृष्णा जवान होती जाती है। क्यों? क्योंकि देह का अभिमान है। इसी प्रकार क्रोध देखो, क्रोध के लिए कहा जाता है किसी क्रोधी व्यक्ति के घर के मटके ही सूख जाते हैं, पर मटके तो चलो सूखेंगे पर उसका खून ही सूख जाता है ना, क्रोधी का खून सूखा हुआ रहता है। तो क्यों? क्योंकि अपने आप को जलाता रहता है। कई कहते हैं बहन जी वैसे गुस्सा नहीं आता है, पर दूसरे हमको गुस्सा दिलाते हैं। अब क्यों दिलाएंगे? कहेंगे कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, झूठ क्यों बोलता है? तो हम कहते हैं झूठ तो उसने बोला ना, अपना पाप किया, आपको क्यों गुस्सा आता है? किसी ने झूठ बोला और उसका पाप बना, पर मुझे क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि जितना झूठ बोलना पाप है उतना गुस्सा करना भी पाप है, वो कोई पुण्य थोड़ी है। कई बार माताएं हमें कहती है बहन जी क्या करें, बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन बच्चों पर भी गुस्सा क्यों करना पड़ता है थोड़ा सोचो। आप उनको अपना क्यों समझते हो? ये मेरा बच्चा है, मोह रखते हो, अधिकार रखते हो, तभी क्रोध करते हो, दूसरे के बच्चे पर थोड़ी करेंगे। एक माता थी, अपने बच्चे को इतना मार रही थी मैंने देखा इतना मार रही है, तो अचानक मेरे मुख से निकल गया, मैंने कहा माता जी इस बच्चे को क्यों मार रहे हो? होगा एक साल का बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा था, और मार रही है और वो रो रहा है, वो उसको मार रही है, वो रो रहा है और मारती जा रही है, वो रोता जा रहा है मारती जा रहे। तो मैंने जैसे ही कहा कि क्यों मार रही हो, क्या उसने भूल की? भूल की होगी जो मार रही हो। तो जैसे ही मेरा बोलना, उसको तो गुस्सा तो था ही, तो मेरे पर भी बरस पड़े। मुझे कहते तुम्हारा क्या जाता, मेरा बच्चा है। समझे? तुम्हारा क्या जाता, मेरा बच्चा है, मैं भले मारूं। हो सकता है ये सच सही बात है, मेरा बच्चा है तो मैं जो चाहूं सो करूं। अगर बच्चे को मारा और वो बच्चा सचमुच मर गया मान लो, तो क्या होगा? जेल में जाएगी। एक माँ भी अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकती है। आजकल तो मार ही नहीं सकते किसी को, आजकल तो इतने कानून बनते जा रहे हैं कि अगर वो पुलिस में रिपोर्ट करेगा तो जिसने मारा ना उसको सीधा जेल में। कई इतने सारे कानून बनते जा रहे हैं और हम अधिकार समझ करके ये कर रहे हैं, हमारा किसी पर भी अधिकार नहीं है, ये समझ लो। आत्मा जब शरीर से निकलेगी शरीर पर भी अधिकार नहीं रख सकती है। एक सेकंड में जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं, प्राण पखेर उड़ जाएंगे, आत्मा पंछी उड़ जाएगा, पूछेगा भी नहीं शरीर से मैं जाऊं, छुट्टी है, छुट्टी मांगेगा क्या? और शरीर कहाँ छुट्टी देने वाला है, इतना मोह लगा पड़ा है शरीर को ही समझ रहे हैं हम। तो इसीलिए ये सब पाप के खाते में जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार तो कई माताएं कहती है पर बहन जी मैं, मेरा समझो बच्चे ने कोई चीज गिराई और वो चीज टूट गई मान लो। अब माँ ने देखा कि ग्लास टूट गया, वास टूट गया, और बच्चे ने तोड़ा होगा, देखा नहीं किसने तोड़ा, पर बच्चे से पूछती है ये तुमने तोड़ा? अब हाथ उसके मुंह के पास, और अगर बच्चा कहता हाँ मम्मी मैंने तोड़ा, एक थप्पड़ मिलने वाली है, तो बच्चा क्या करता है? वो डर जाता है कि माँ मारेगी, इसलिए वो झूठ बोल देगा कि नहीं मैंने नहीं तोड़ा। अब तोड़ा तो है तो, परंतु झूठ क्यों बोला? क्योंकि माँ का डर लगा कि माँ मारेगी, तो अपनी रक्षा के लिए उसने झूठ बोल दिया। पर मान लो हाँ हाँ कहा और आपने उसको मारा, अब मान लो झूठ भी बोला फिर भी आपने उसको मारा, अब आप कहेंगे बहन जी न मारे तो ये तो तोड़ता ही रहेगा ऐसे, तो डर तो रखना चाहिए ना, उसको डरना तो चाहिए। परंतु हो सकता है आपके डर के कारण झूठ बोला हो, अगर आप उसको मारती नहीं तो वो कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चे तो बड़े सच्चे होते हैं। तो हमने कई बार देखा है माँ के आगे झूठ बोल देगा पर पिताजी के पास जाकर के सच बोलेगा, कहेगा डैडी मैंने तोड़ा, पर मम्मी को नहीं बताना क्योंकि मम्मी मारती है। अब माँ सोचेगी इसको सुधारने के लिए मार रही हूँ, बस मारने से सुधरेगा भी नहीं, ये भी नहीं समझो कि मारने से सुधरेगा, हम अपना ही पाप कर्म बनाते हैं। तो कई माताएं कहती है फिर क्या करें, बच्चे को डांटे भी नहीं। हम कहते क्यों नहीं डांटो, आंख जरूर दिखाओ, पर कहा जाता सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, माना कि आप उनको भले थोड़ी आंख दिखाओ पर अंदर में तो स्नेह है ना, प्यार है, बच्चा है, उसको समझाओ, उसको प्यार से समझाओ और समझा करके आप उनको योग्य बना सकते हो, पर मारने से वो कभी नहीं बदलेगा। हमने देखे हैं जितने भी कईयों का वर्णन आता है कि बचपन में उन्होंने माँ से मारे खाई है, तभी वो बड़े होकर के इतने क्रूर बन जाते हैं। जैसे हिटलर के लिए बताते हैं, सिकंदर राजा के लिए बताते हैं, बचपन में उनको माँ नहीं थी तो सौतेली माँ मिली, और जब सौतेली माँ मिली तो सौतेली माँ उसको उनको बहुत मारती थी, तो परिणाम स्वरूप उनके अंदर इतना गुस्सा भर आया कि उनको बस आया मैं भी सबको मारूं, क्योंकि बचपन में जो सिखाया गया। शिवाजी के लिए बताते ना उनकी माँ जीजाबाई ने कितनी ऊंची ऊंची उनको बातें सिखाई, तो बचपन में माँ जैसे बच्चों को सिखाती है बड़ा होकर के वो वैसा ही बनता है। तो पहली शिक्षिका बच्चे की कौन है, माँ। हाँ, तो कभी भी माताएं ये नहीं सोचो कि मारने से बच्चा ठीक होगा, पर ये भी नहीं है कि उनको समझाओ ही नहीं, ये भी नहीं है। अगर समझाएंगे नहीं बचपन में तो वो बड़ा होकर के बुरा बन सकता है। वो मिसाल देते हैं ना कि एक व्यक्ति था बहुत बड़ा खूनी बना, तो जब उसको फांसी की सजा मिलने वाली थी तो उनसे पूछा गया कि आपका कोई, आपको किससे मिलना है, कोई अंतिम इच्छा है, किससे मिलने की इच्छा, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलूं। तो जब माँ उसके सामने आई तो उसके कान काट दिए, तो लोगों ने कहा ये क्या माँ के सामने, माँ सामने गई और कान काट दिए, तो उसने कहा कि वास्तव में मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, मेरी माँ भी उतनी दोषी है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो छोटी छोटी चोरी करके आता था, पर वो छोटी छोटी चोरी करके मैं माँ को बताता था पर माँ ने कभी मुझे रोका नहीं, कभी कुछ कहा नहीं, तो मैं इतना बड़ा चोर बन गया, लुटेरा बना, डाकू बना या जो भी बना, तभी तो फांसी उसको मिल रही थी। अगर बचपन में मुझे माँ रोकती होती तो आज मैं ये नहीं बनता होता, तो इसलिए मैं अकेला दोषी नहीं हूँ, मेरी माँ भी उतनी दोषी है। तो यानी कहने का भाव है कि पाप कर्म की परिभाषा केवल अपने तक ही नहीं लगती है। जैसे कोई हत्यारा है, हत्या करने वाला तो दोषी है ही है, पर जिसने रास्ता बताया, जिसने उसको प्रेरणा दी, जिसने उसको धन दिया उसके लिए, उसको मुख से कहा, वो भी उतना ही दोषी है जितना हत्यारा दोषी है। कई कहते हैं भाई मीट खाते हैं, अब ये भी तो बहुत बड़ा पाप है किसी जानवर की हत्या करके खाना, हाँ ये कितना बड़ा पाप है। तो कई कहते हैं बहन जी हम थोड़ी जानवर को मारते हैं, वो जिसने मारा होगा वो बेचता, हम तो हमारी प्लेट में आता है और हम खाते हैं। आप खाते हो तो इसीलिए कोई पकाता है, कोई पकाता है इसीलिए कोई खरीदता है, कोई खरीदता है इसीलिए कोई बेचता है, कोई बेचता है इसीलिए कोई मारता है, हा? तो केवल मारने वाले पर ही तो दोष नहीं है, और कोई मारता है तभी तो कोई पकड़ता है, परंतु पकड़ने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, सब पर बराबर दोष लगता है, क्योंकि सब एक दो के लिए करते हैं ना, तो ये पाप का खाता बन जाता है। कई कहते हैं बहन जी अगर ये कोई हम ये मीट न खाएं तो जानवर तो बहुत बढ़ जाएंगे, हम कहते हैं आप उनकी चिंता क्यों करते हो, जानवर को खाने वाले दूसरे जानवर बहुत है। बड़े जानवर छोटे जानवर को खाते, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, वो उनसे छोटी को खाती, ये उनका भोजन है, इंसान का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन मीट नहीं है। पृथ्वी ने प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, धरती से मिलता है, वो हमारे लिए है, न कि मीट या जानवर की हत्या करके खाना। अब ये सारे पाप के खाते में कर्म जा रहे हैं और मनुष्य नहीं समझता है इन बातों को। तो कितने प्रकार के कर्म हैं और उन कर्मों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो पाप की परिभाषा हमने सुनी और उसका परिणाम क्या निकलता है, तन के कई रोग, मन की अशांति। जब कोई क्रोध के वश होता है तो 10 मिनट गुस्सा किया पर कितने घंटे उसका पश्चाताप चलता है, कितने घंटे। गुस्सा तो 5 मिनट ही मुश्किल से किया होगा लेकिन सारा दिन उनका व्यस्त वेस्ट चला जाता है, क्योंकि सोचता है ये मैंने ऐसे क्यों कहा, नहीं कहता होता तो अच्छा होता। तो किया 5 मिनट गुस्सा लेकिन पश्चाताप पूरा दिन, कई बार तो सालों साल। एक शब्द ही मुख से केवल कहा होगा लेकिन वो भूलता नहीं उसको। तो इसीलिए ये सब पाप के खाते जो बनते हैं उससे तन के रोग, मन की अशांति और धन की खींचातानी। धन वास्तव में सुख देने वाली चीज है लेकिन आज धन भी दुखदायी बन गया है, क्योंकि पाप की कमाई अगर है वो पेट में कभी नहीं जाएगी, वो पेट को सुख नहीं देगी पाप की कमाई। कहा जाता पाप की कमाई, हाँ, चोरी का माल मोरी में, मोरी गटर, चोरी का माल मोरी में, अर्थात पाप की कमाई पेट में नहीं जाएगी, अगर जाएगी भी तो भी दर्द करेगी पेट को। वरना ये कहावत क्यों प्रसिद्ध हो गए हैं, क्योंकि वो सुख धन तब दे जब सचमुच वो अपनी मेहनत की कमाई हो। तो तन का रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी और संबंधों में अनबन, ये दुनिया में हम देख रहे हैं। आज संबंध भी बंधन बन गए हैं। क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार हिसाब किताब ही हम चुकतू कर रहे हैं। अब इसका बहुत विस्तार है, उसमें न जाकर के इतना ही हम कहेंगे कि परमात्मा आकर के अब इन कर्मों से हमें छुटकारा देते हैं। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देकर, कर्मों का ज्ञान देकर पाप कर्म से हमें बचाते हैं। और हमें यही कहते हैं, बच्चे ये 5 खोटे पैसे हमें दे दो, आपको बताया ना। तो इसीलिए इन विकारों के वशीभूत कर्म पाप के खाते में गए हैं, इसलिए ये घोर कलयुग बन गया है। पर अभी अगर इसे हम सतयुग बनाना चाहते हैं तो कर्मों को बदलो, और क्या कर्म करो, सत्कर्म करो। ये सत्कर्म करना परमात्मा हमें सिखाते हैं। किसको कहेंगे सत्कर्म? पाप कर्म का बिल्कुल अपोजिट, विरुद्ध। जो भी कर्म आत्मा के ज्ञान से हम करते हैं, आत्मिक स्थिति से हम करते हैं, आत्मिक दृष्टि से करते हैं, सबको आत्मा देखकर करते हैं, आत्मा के भाव से करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सब ईश्वर का एक परिवार है, हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, और जाति धर्म भाषा प्रांत देश रंग ये जितने भी भेद इस संसार के अंदर हैं, इन सब से ऊपर आत्मिक भाव से जो भी कर्म किया जाता है, परमात्मा की याद में जो कर्म किया जाता है, सबके कल्याण के प्रति जो कर्म किया जाता है, वो निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म सत्कर्म बनता है, जिसमें सेवा भावना समाई होती है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, अपना समय श्वास संकल्प शक्ति उनसे सेवा, औरों को देने की भावना, ये जैसे जैसे हमारे अंदर में जागती जाती है, हमारे कर्म सत्कर्म बनते जाते हैं। इसीलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि क्या है, आत्मिक भावना से कर्म करो, इस दृष्टि को शुद्ध बनाओ, किसी को देह रूप में नहीं देखो, आत्मा को देखो, वो आत्मा भी परमात्मा की संतान है, ये भी मेरा भाई है, ये भावना रख करके कर्म करो तो आपका कर्म सत्कर्म बनेगा। और इन सत्कर्मों के आधार पर हमारा ये जीवन तो बहुत ऊंचा बन ही जाएगा, पर भविष्य जन्म जन्म हमारे सफल हो जाएंगे। कैसे सफल होंगे? मानव देव बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। लक्ष्मी और नारायण जो सतयुग के महाराजा महारानी थे, वो किन कर्मों से इतने ऊंचे बने? जरूर कोई तो कर्म किए होंगे ना। आप देखो इनका तन निरोगी, मन में कितनी शांति, धन की तो कोई कमी नहीं, साक्षात लक्ष्मी धन की देवी है, सपना प्यार और प्रेम। तो किस आधार पर इन्हों को इतना ऊंच फल मिला, जो केवल सतयुग त्रेता में ही नहीं था, लेकिन द्वापर कलयुग में जब उनके मंदिर बने, उनकी मूर्तियों को भी चारों प्रकार का सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, जन का सुख, क्योंकि कोई खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ये तन का सुख है। चेतन में कितना तन उनका सुखी होगा, स्वस्थ होगा, जो मूर्ति भी खंडित अगर हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं की जाती है, तो अखंड तन होगा। अकाले मृत्यु वहां नहीं होती थी, काल नहीं खा सकता था सतयुगी दुनिया में, 150 साल की दीर्घ आयु होती है वहां। और अपनी स्व इच्छा से आत्मा देह छोड़ती है, नया चोला उसको मिलता है, जैसे एक पुराना चोला उतारा और नया चोला पहना, वहां मृत्यु शब्द भी नहीं होता है। तो इसीलिए देवताओं को अमर कहते हैं। तो कौन से कर्मों से वो देवताएं अमर बने और कब वो कर्म किए, कब किए होंगे? सतयुग में थोड़ी जाकर के करेंगे। शिव परमात्मा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, तो नर नारायण किन कर्मों से बना और नारी लक्ष्मी किन कर्मों से बनी? अभी परमात्मा इस संगम युग पर हमें जो सत्कर्म करना सिखाते हैं, इन कर्मों से मानव देव बन सकता है। और एक जन्म के सत्कर्म जिनसे दो युग तक हम उसका फल खाते रहेंगे, और वो संसार स्वर्ग कहलाएगा। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं होगा, परंतु सतयुग और त्रेता युग ही स्वर्ग कहलाता है, जहां मानव देव के रूप में है। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है भारत की संस्कृति में, तो वो 33 करोड़ देवी देवताएं कहां चले गए, कहां गए, पता है कहां गए? हाँ बोलो, हम सब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, कहां गए सभी? बोलो, नशा चढ़ता है, पता है वो कहां गई वो आत्माएं? यहां ही बैठी है। यहां भी देखो, किसी का नाम नारायण होगा, किसी का नाम लक्ष्मी होगा। वहां सतयुग में तो लक्ष्मी अलग है, नारायण अलग होगा, पर कलयुग में एक ही व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण होता है, होता है ना? एक वहां तो राम सीता अलग अलग होंगे, पर यहाँ कलयुग में एक ही व्यक्ति का नाम सीताराम भाई होता है, सीताराम भाई, लक्ष्मी नारायण भाई, राधेश्याम भाई, एक ही व्यक्ति का। तो नाम तो बहुत सुंदर है, इसका मतलब वो देवताएं हमारे पूर्वज थे, ये भारत की संस्कृति है। तो वो सब हमारे पूर्वज कहाँ चले गए? वही तो आत्माएं फिर जन्म लेकर के यहाँ होगी, और कहाँ जाएंगे वो? यही तो है, बीच से कोई भी आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती है। कई कहते हैं कि बहन जी, इतना दुनिया में वृद्धि कैसे हो रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ती कैसे है? तो हम कहते हैं जो आत्माएं एक बार सृष्टि मंच पर आती है वो बीच से वापस नहीं जाती है, दूसरी आत्माएं आती जाती तो वृद्धि होती जाती है। तो इस संगम युग पर शिव परमात्मा हमें सत्कर्मों का ज्ञान देते हैं। जो कर्म हम करते हैं और संचित होते जाते, क्योंकि अभी हमें फल नहीं चाहिए, अभी तो त्याग तपस्या सेवा का जीवन है, हमें अभी रिटर्न नहीं चाहिए, परंतु इसका फल हम जानते हैं इतना ऊंचा होगा जो दो युग तक हम खाते रहेंगे। तो मानव देव बन जाता है, कैसे बनता है, इस संगम युग के सत्कर्मों से। तो हम इस संगम पर यही लक्ष्य रखें, अपने तन से जितनी सेवा कर सके करें, मन से जितनी सेवा कर सके करें, धन से जितनी कर सके करें, इनसे दुआओं को कमाना है। ये दुआएं ही हमारे जीवन में इस समय काम आएंगे, वही आत्मा के साथ चलेगी, बाकी तो कुछ नहीं चलने वाला है। इस जो हमने कर्म किए हैं वो हमारा भाग्य जरूर निर्धारित करेंगे, और कहा जाता है भाग्य से ज्यादा समय से पहले कुछ नहीं मिलता। भाग्य तो हमारी परछाई है, वो भाग्य का आधार त्याग है। हम सोचे अभी हम ले लें तो भविष्य कुछ नहीं मिलेगा, कच्चा फल खा लिया, थोड़ा धीरज तो रखो। तो इसीलिए कोई मान शान इज्जत नाम इनके पीछे ही पड़े रहते हैं, हम कहते हैं ये कच्चा फल खाना है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कर रहे हैं। सेवा करते हैं तो हम किसको बताएं भी नहीं कि हमने ये सेवा की, और गलत काम करते हैं तो साफ बता दो, सच बता दो, तो आधी सजा माफ हो जाएगी। और अच्छा काम करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर जानता है उसका फल वही देगा। कई तो समझते मैंने इतना अच्छा काम किया किसी को बताए नहीं, तो सबको बताएंगे मैंने ये किया, मैंने इतना अच्छा इतना दान किया, ये किया वो किया। हम कहते जितना वर्णन करते जाएंगे ना उतना आपका फल कम होता जाएगा, इसलिए अभी वर्णन करने की जरूरत है, कच्चा फल खाना है, मान शान के पीछे हम पड़े रहते हैं। तो इसीलिए सब कर्म करते जाओ, उनको अपने जीवन में समाते जाओ, तो आत्मा इतना ऊंचा भाग्य ले जाएगी, और जब भी जाए कोई हमें डर नहीं, भविष्य की भी चिंता नहीं। कलयुगी दुनिया में लोगों को कितनी चिंता रहती है, हाय मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। आत्मा के ज्ञान से मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। कहते हैं ना प्रार्थना में, असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतम गमय। मैं अमर आत्मा हूं इसका हमें ज्ञान मिल जाता है, तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर क्यों लगता है इंसान को, क्योंकि उसको ये महसूस होता कि मैं मरता हूं, पर मैं तो कभी नहीं मरता, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो एक ज्योति हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, तो मैं आत्मा तो कभी नहीं मरती हूं, तो डर किस बात का। दूसरा, मृत्यु का डर इसलिए भी लगता है क्योंकि मोह है, वस्तुओं में व्यक्तियों में मोह होता है, तो डर लगता है ये सब छूट जाएगा। अब शिव बाबा कहते हैं ये मोह रखना भी चोरी है, ये देह अभिमान भी झूठ है, पाप कर्म करना भी आत्मा की हत्या करना है, तो आत्मा को कोई डर नहीं क्योंकि हम इनसे बचे हुए हैं। असत कर्मों की पूंजी हमारे साथ है, इसलिए हमारा भविष्य भी उज्जवल है। कई इसीलिए भी डरते हैं कि पता नहीं भविष्य में कौन सी योनि मिलेगी, कौन सा जन्म मिलेगा। अब शिव बाबा ने वो भी हमें बताया है कि भविष्य में आपको तो बहुत ऊंचा जन्म मिलेगा, मानव देव बन जाएगा, दुनिया में तो कितना डरते हैं, पता नहीं कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, चूहा बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, हाँ तो बहुत डर लगता है भविष्य का अज्ञान। पश्चिम बाबा कहते नहीं, मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा का वो बीज के समान है, तो चोला उनको वैसा ही मिलेगा जो आत्मा के अंदर संस्कार है। अब मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, जन्म लेते ही दाना चुगना चालू करेगा, बंदर का बच्चा पैदा होगा तुरंत जन्म लेते ही कूदना चालू कर देगा, है ना। मनुष्य का बच्चा होगा उसका दूसरा रूप होगा, वो कैसे, पहले दो दिन तो उसको पता ही नहीं होता है, एकदम वहीं पड़ा है। तो इसीलिए हर एक आत्मा का अपना अपना संस्कार है, मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला मिलता है तब उसी अनुसार वो संस्कार व्यक्त करते हैं। तो कई कहते हैं फिर हमने जो पाप कर्म किए हैं उन योनियों में जाके भोगते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं वो भी नहीं है, मनुष्य आत्मा मनुष्य चोले में ही भोगती है, वो जो अन्य योनियां हैं ये भोगने की योनियां नहीं है। अगर वो भोगने की योनियां होती फिर तो मनुष्य योनि में भोगना होनी ही नहीं चाहिए, या तो और योनियों में भोगना ही भोगना होनी चाहिए, पर दोनों ही नहीं है। मनुष्य योनि में जितनी भोगना है इंसान को, जानवरों को भी उतनी नहीं है। कई तो विदेशों में जाओ, क्या कुत्तों की मालिश पालिश होती है, हाँ बात नहीं पूछो, डॉग शोज होते हैं, रोज अखबारों में आता है, इंसान का कदर नहीं है जितना कुत्तों का और बिल्लियों का कदर है। विदेशों में जाओ, एक लंदन में एक माता थी, उसने विल में अपने बिल्ली को हीरो का हार विल में दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा ये हीरो का हार मेरे बिल्ली को मिले, जब मर गई तो बिल्ली को हार पहनाया। अब बिल्ली को क्या पता ये हीरो का हार है, लेकिन ये हम इसको कहते हैं कि ये नहीं कि वो कोई भोग योनि है। तो इसीलिए ये भी हमारे अंदर डर नहीं है कि पता नहीं भविष्य क्या होगा, अगर ये जन्म हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो डरने का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए वो कबीर का दोहा है ना, सुना होगा आपने, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जग हंसा। बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और बाकी माता पिता परिवार वाले इतने खुश होते हैं बच्चा पैदा हुआ, तो तुम रोए जग हंसा, पर कबीरा ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। तुम हंसो, खुशी खुशी जाओ कि मैंने अपना जीवन सफल किया, ये न हो कि अंत के समय वो जन्म वाली स्थिति फिर से हो कि हम रोते रोते जाएं कि हम तो हाथ खाली जा रहे हैं, हमने तो अपना जीवन व्यर्थ गवाया, और लोग हंसे खुशी मनाए कि अच्छा हुआ गया, हा? अच्छा हुआ जान छूटी उनसे, नहीं, पर हम हंसे हंसे जाएं कि हमने अपना जन्म सफल किया, और उनको लगे कि ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा, कुछ यादगार हम अच्छी छोड़ के जाएं, बाकी तो क्या हम लेके जाएंगे, अपने कर्म तो आत्मा के साथ जाएंगे। तो इसलिए ये संगम युग का जीवन तो हमारा सफल है ही है, पर हम अपना भविष्य भी सफल कर रहे हैं, इसलिए भविष्य का भी डर नहीं है। फिर कई कहते हैं कि अच्छा सतयुग में इतने सारे देवी देवताएं थे, फिर वो मनुष्य कैसे बने, उन्होंने क्या पाप किया जो इंसान बने। अब हम कहते हैं पाप किया इसलिए इंसान बने, ऐसी बात नहीं है, देवताएं थोड़ी पाप करते हैं। दुनिया में तो बहुत कुछ, भारत के अंदर हम कई जगह देखते हैं इतने गंदे गंदे चित्र देवी देवताओं के दिखाते हैं, ये सब धर्म ग्लानी की निशानी है। देवताएं तो कितने पवित्र फूल हैं, तो उन्होंने कोई पाप थोड़ी किया जो फिर मनुष्य बने, लेकिन जो इस समय हम सत्कर्म करते हैं वो जमा होता जाता है, और सतयुग और त्रेता युग में हम उसको खाते जाते हैं, उसको निकालते जाते हैं, यूज करते जाते हैं, तो आखिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप 1 लाख रुपया बैंक में डालो और रोज 1-1 हजार रुपया निकालो तो 100 दिन के बाद क्या होगा? 1 लाख रुपया खत्म, क्योंकि रोज 1-1 हजार निकाला और 1 लाख डाला तो 100 हजार होता है 1 लाख में, तो 100 दिन के बाद खाली हो जाएगा आपका खाता। तो इस समय हम एक ही साथ इतना खाता जमा कर लेते हैं, 1 का लाख गुना बन जाता है, जो हम 2 युग तक खाते ही रहेंगे। वहां भी कर्म तो करेंगे ना सतयुग में, लेकिन वो कर्म कौन से होते हैं? पाप कर्म तो होते ही नहीं, क्योंकि वहां विकार होता ही नहीं है, पर वहां सत्कर्म भी नहीं होते हैं। आप कहेंगे सत्कर्म नहीं करते हैं देवी देवताएं, हम कहते हैं नहीं, सत्कर्म इस समय जरूरत है। जब तन से सेवा करनी है, मन से सेवा करनी है, धन से सेवा करनी है, ये सेवा की जो भावना है ये इस समय हमारे भीतर जागे, तब सत्कर्म बनते हैं। सतयुग में सेवा की भावना की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को कोई कमी नहीं है, हर एक अपने तन मन धन से सुखी है। कोई डॉक्टर की वह जरूरत नहीं होगी, कोई वकील की जरूरत नहीं होगी, कोई भिखारी नहीं होगा, कोई कोर्ट कचहरियां नहीं होंगी, कोई अस्पताल नहीं होंगे, कोई दवाइयां नहीं होंगी, कोई कानून की किताबें नहीं होंगी, जरूरत ही नहीं होगी। आवश्यकता होगी तभी तो ये सब निकलते हैं ना। ये सब फिर द्वापर युग से निकलता है, जब सत्कर्मों की पूंजी समाप्त हो जाती है। तो सतयुग में जो हमारे कर्म चलते हैं नेचुरल, उनको हम कहते हैं अकर्म। अकर्म होते हैं वो न्यूट्रलाइजिंग एक्शंस है, जो सत्कर्मों की जो पूंजी है वो धीरे धीरे खाते जाते हैं, अपने तन मन धन का उपयोग करते हुए उस सुख को, प्रकृति का चरम सुख हम पाते रहते हैं और अकर्म करते जाते। और जैसे ही 2 युग समाप्त हुए, सत्कर्मों का फल पूरा हुआ, द्वापर शुरू हुआ। द्वापर माना दोपुर, दो हाथ है तो ताली बजती है, आवाज होता है। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, पर जैसे वही देवी देवता धर्म की आत्माएं अपने आप को भूल जाती है, देह अभिमान में आ जाती है, और वही देह अभिमान विकारों को लाता है, तो द्वापर युग से विकारों की प्रवेशता होती है और ये संसार नरक बनना शुरू हो जाता है। तो नरक कहीं नीचे नहीं है, लेकिन नरक माना द्वापर और कलयुग, और इसके आधार से फिर कर्म का स्वरूप बदल जाता है। द्वापर कलयुग में जो कर्म होते हैं उनको कहते हैं या तो पाप कर्म या पुण्य कर्म। इसलिए दुनिया में अभी 2 प्रकार के कर्म जानते हैं लोग, पाप और पुण्य। तो पुण्य कर्म किसको कहेंगे? पुण्य कर्म किसका मतलब है कि जो भी हम दान करते हैं वो पुण्य बनता जाता है। स्थूल दान, अन्नदान, वस्त्रदान, भूदान, रक्तदान, नेत्रदान, ये पुण्य का कर्म बनता है, क्योंकि हम सेवा करते हैं, परंतु उसमें ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान से नहीं करते कि ये आत्मा है, इन आत्मा के साथ कि हम सेवा कर रहे हैं, दया भावना रखते हैं, पर आत्मा के ज्ञान का अभाव है, इसीलिए वो पुण्य का खाता बनता है, सत्कर्म का खाता नहीं बनता है। पर पुण्य के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है, तभी वो कर्म पुण्य का बनेगा। एक कर्म पुण्य का तब बने जब पात्र योग्य हो जिसको हम दान करें। मानो हम अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, जो भी दान करते हैं, हम जिसको दान करते हैं वो पात्र योग्य नहीं है। जैसे बता ना, बीज हम डालते हैं पर धरनी ठीक नहीं है, वो पात्र कुपात्र है, सुपात्र नहीं है, तो वो दान निष्फल जाएगा। वो योग्य पात्र नहीं है, उसको आवश्यकता ही नहीं है, तो वो दान पुण्य थोड़ी बनेगा। अपने मान शान के लिए हम दान करते हैं तो पुण्य नहीं बनेगा। इसीलिए पहली बात कि दान पात्र को ही देना है, जो आवश्यक है जिसको, तब वो पुण्य बनेगा। अपने मान शान के लिए दान करना पुण्य नहीं बनता है। और दूसरी बात, बहुत ही जरूरी बात है कि दान किया और फिर भूल जाओ, उसके बाद ये नहीं सोचो मैंने किया। कहा जाता है दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। गुप्त दान महाकल्याण। अगर वर्णन किया तो पुण्य कम होता जाएगा। तो दुनिया में तो वर्णन कितना होता है, इतना किया, इतना किया, मैंने किया, मैंने किया, हा? तो पुण्य धीरे धीरे कम होता जाता है। नहीं तो द्वापर कलयुग में पुण्य बहुत होता था पहले। कोई भी धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना, प्याऊ बनाना, सड़कें बनाना, कई प्रकार के धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य संसार में मनुष्य करते हैं, पर ये गुप्त होना चाहिए, वर्णन नहीं होना चाहिए। देखो पहले जमाने में मंदिर बनते थे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो बनता था। अभी मंदिर लक्ष्मी नारायण का और नाम किसका, जिसने मंदिर बनाया, समझ गए? अब बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर बिरला वालों ने बनाया, पर मंदिर तो लक्ष्मी नारायण का है ना, पर नाम क्या पड़ गया, बिरला मंदिर। मूर्ति बनाएंगे राधे कृष्ण की और उस मूर्ति के नीचे अपना नाम डाल देंगे कि फलाने ने इतना इतना हजार रुपया दान करके ये मूर्ति बनवाई है, तो जैसे जिसका नाम उस मूर्ति के नीचे पड़ा जैसे उसकी मूर्ति हो। मूर्ति तो राधे कृष्ण की है। जहां भी जाओ एक 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 ईंट पर नाम लिखा होगा कि फलाने ने इतना दान दिया, ये ईंट लगाई, ये कुर्सी बनाई, ये टेबल बनाया, ये सोफा बनाया, नाम के लिए काम करते हैं। तो देखो पुण्य तो वही समा गया, उस ईंट में ही समा गया, आगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हो कहीं भी किसी का नाम है, ये सोफा किसने बनाया, ये गद्दी किसने बनाई, टेबल किसने बनाया, कोई ईंट किसने दान की है क्या? इसलिए कई लोग यहाँ पर जब आते हैं ना तो उनको आश्चर्य होता है कि यहाँ का खर्चा कैसे चलता है। बहुत पूछते इतना बड़ा कारोबार तो खर्चा कैसे चलता है। अभी खर्चा कैसे चलता है सोचने की तो बात है जरूर, क्योंकि कोई परम धाम से थोड़ी पैसा आता है, यहाँ के लोग ही तो खर्चा करेंगे। लेकिन पर यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न उठता है। और संस्थाओं में जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो वहाँ नाम लिखे होते ना, इसलिए उनको लगता है कि हाँ उसने दान किया है। बड़े बड़े दान पात्र होते हैं तो दान पात्र देख करके लगता है कि हाँ यहाँ दान करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा का बॉक्स है, ये देखो जैसे यहाँ पड़ा है, यहाँ पर बाबा की भंडारी है। इस भंडारी में जो जितना यथा योग यथा शक्ति डालते हैं, इसलिए यहाँ कोई उस रूप से नहीं है कि इतना चंदा देना है, कोई डोनेशन देना है, ये हम मानते हैं ये परिवार है। जैसे परिवार कैसे चलता है, कैसे चलता है एक परिवार, कैसे चलता है, जो बच्चे हैं वही कमाते हैं और घर को चलाते हैं ना। कोई बाहर से डोनेशन चंदा लेते हैं क्या घर को चलाने के लिए, है क्या? घर वाले ही काम करते, नौकरी करते, धंधा करते और घर को चलाते हैं। एक पिता के चार बेटे होंगे तो पिता से पूछा जाएगा तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, वो कहेगा चार बेटे हैं मेरे, कमाते हैं तो वो खर्चा करते हैं। तो ये भी एक ईश्वरीय परिवार है। इस परिवार में जो भाई बहने आते हैं वो अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। अब कोई 1,000 कमाता है और 10 रुपया देता है तो उसका भाग्य उस अनुसार बनता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है और 100 रुपया देता है, उसका भी उतना ही भाग्य बनेगा, क्योंकि रेशियो तो एक ही हुआ ना, 10/1,000, एक बटा सौ, तो हजार कमाया दस दिया, दस हजार कमाया सौ दिया, और उससे ज्यादा कमाया उस अनुसार दिया मानो, परंतु भाग्य एक जैसा ही बना क्योंकि कमाई कितनी है उसकी। तो देखा गया है कि यहाँ पर शिव बाबा का कार्य जो चलता है, हर एक समझता है ये मेरा परिवार है, मैंने यहाँ पर इतना पाया है तो यहाँ जरूर मैं बाबा की सेवा के लिए दे के जाऊं, और मैं मेरे पास जितनी शक्ति है केवल मैंने खर्चा किया उतना ही नहीं दूं, लेकिन यहाँ हजारों आते हैं बेचारे, गरीब भी कई आते हैं, खाके जाते हैं, तो ये इस अनुसार पुण्य बनता है, सत्कर्म बनता है, तो बाबा की भंडारी में डाल के जाते हैं। तो यहाँ पर कोई नाम के लिए नहीं सेवा करता है। कई हम लोगों से पूछते हैं, बहन जी आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं हमें तो इतना कुछ मिल रहा है, हीरे जवाहरात अमूल्य रत्न, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं कर सकता है। हा? बिल्कुल क्यों नहीं मिलता है, भविष्य में इतना ऊंचा फल मिलता है, हम अभी के लिए थोड़ी ये सब कर रहे हैं। कोई कहेगा एक घंटा लेक्चर दिया, दो घंटा लेक्चर दिया, तो एक एक सौ रुपया सबसे लेंगे फी टिकट। यहाँ ज्ञान रत्नों का मूल्य सौ रुपए दो सौ रुपए से होता है क्या? ये तो अमूल्य है, इससे हम सौ रुपया दे करके थोड़ी चुकतू कर सकते हैं। तो इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम एक परिवार के रूप में रहते हैं, और हर एक अपने जो भी जितनी क्षमता है उस अनुसार सेवा करता है, तो उसका बहुत ऊंचा भविष्य बनता है। कई लोग कहते हैं बहन जी आप लोगों का तो बड़ा त्याग है, हमसे तो इतना त्याग नहीं होगा। हम कहते क्या त्याग करते, कपड़े सफेद पहनते हैं, चलो सोना नहीं पहनते हैं, ये सब नहीं पहनते, परंतु उसमें तो अच्छा ही है ना। अब हम समझो सफेद कपड़े पहनते हैं, जो रंगीन कपड़े पहनते हैं उनको यही चिंता लगी रहती, आज लाल पहना कल हरा पहना है परसों पीला पहना है, अगर वही कपड़ा दूसरे दिन पहनता लोग कहेंगे तुमको साड़ी नहीं है क्या, कल वाली साड़ी पहन ली। अब हमको कम से कम ये तो चिंता नहीं कि कोई हमको कहेगा, भले कल वाले कपड़े पहने भी हो समझो। परंतु जितना हम लोग साफ रहते हैं क्योंकि स्वच्छ सफेद कपड़े तो ध्यान तो रखते हैं, तो इसलिए और स्वच्छ रहते हैं। अब जो काले कपड़े पहनते हैं कोट पैंट काला काला, वो एक महीने तक वही पहनते रहेंगे, बांस आती रहेगी, है तो कौन अच्छे हुए, जो रोज साफ स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। अच्छा सोना नहीं पहनते, चलो वो सोना किस काम का जो कान काटे, कई बार देखे इतना मोटा मोटा सोना पहनते वो कान ही कट जाता है, वो इतना बड़ा छेद हो जाता है कान में, क्योंकि इतना मोटा मोटा वो कुंडल डालते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा कहते अभी मत, अभी जरूरत नहीं है, सतयुग में तो बहुत पहनना, वहां तो देखो लक्ष्मी साक्षात कितनी संपत्ति होगी उनके पास। तो इसीलिए अभी जितना त्याग है उतना भाग्य है। हमारा त्याग का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी कुछ नहीं चाहिए, सब माया है माया है, इसलिए हम त्याग नहीं करते। माया धन को नहीं कहते, देखिए इनका विज्ञान का भी तो सुख ले रहे हैं ना, हम कहे ये सब माया है माया है, ये भी तो धन तो यूज होता ही है ना। हम माया किसको कहते हैं, धन को माया नहीं कहते हैं। धन तो सुखदाई है, ये धन नहीं होता तो हम कैसे ये हॉल बनाते, कैसे ये एयर कूलिंग करते, ये सब कहाँ से आता, धन तो लगा है ना। परंतु माया किसको कहेंगे, जब धन के प्रति लोभ है, केवल मुझे मिले मेरे लिए चाहिए, आसक्ति है, वो लोभ माया जरूर है। पेट के लिए कोई मेहनत करता है वो माया थोड़ी है, पर पेटियों के लिए जमा करता है वो माया जरूर है, पेट के लिए माया नहीं है, पेट को तो दो रोटी चाहिए, पर पेटियां तो जितनी घर में भर के रखो रुपयों के साथ नोटों के साथ, और डर लगता रहेगा कहीं चोर न लूट जाए, कहीं सरकार न रेड कर ले, कहीं आग न जला दे, कम से कम हमको वो तो चिंता नहीं है, दो रोटी खाना है, प्रभु का गुण गाना है, और क्या करना है। तो हम कहते हैं ये त्याग नहीं है, ये बड़ा भाग्य है, लेकिन उस भाग्य का आधार त्याग है। कई लोग हम लोगों को ये भी कहते हैं, बहन जी आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो, कितने अच्छे वातावरण में रहते हो, कितना ऊंचा ज्ञान देते हो, कितना अच्छा आपका जीवन है, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हो। तो हम भाग्यशाली है या हमने कोई त्याग किया है, क्या है, क्या कहेंगे, भाग्य है या त्याग है जी, भाग्य है या त्याग है। त्याग में भाग्य है, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से मिले। हम कहीं मैं लू ही हाँ, मिले ही मिले, दू कुछ नहीं। प्रकृति भी पहले लेती है फिर तो देती है ना, एक बीज डालेंगे तो 100 बीज मिलेंगे ना। तो वर्तमान जो मेरे पास है ये मेरे पिछले कर्म का भाग्य है जरूर, पर इस भाग्य को मैं आगे कर्म में बदलूं तो आगे का मिलेगा। अभी खाती रहूंगी अपने लिए ही केवल, तो फिर आगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, यही मैंने पा लिया। फिर कई कहते हैं कि पर बहन जी चलो ये तो बात ठीक है, पर कई ऐसे लोग हैं जो इतने पाप कर्म करते हैं पर बड़े सुखी हैं, मोटर गाड़ियों में घूमते, हवाई जहाजों में घूमते, उनका कितना नाम है, कितनी उनकी महिमा है, और नंबर वन दो नंबर का खाने वाले भ्रष्टाचारी, पर उनका कितना नाम है, कितना वो महिमा पाते हैं। तो हम कहते हैं अगर उनकी महिमा है या नाम है या मान है, ये उनका कुछ संचित कर्म है, अच्छे कर्म का ही फल मिलेगा ना सुख, संचित कर्म है ये, जब तक ये संचित कर्म पूरा नहीं होता है तब तक उनको मान मिलता जाएगा, पर अभी जो उनका गलत कार्य चल रहा है ये संचित होता जा रहा है। ये नहीं सोचो कि इस गलत कार्य का वो परिणाम है, क्योंकि तुरंत फल मिलेगा ये जरूरी तो नहीं है ना। अब मैंने आम का बीज बोया परंतु थोड़े समय के बाद मैं देखती हूँ कि अनार का पेड़ निकल रहा है, मैं कहूंगी हमने तो बीज आम का बोया है, अनार कैसे निकल रहा है। ये नहीं कि आम के बदले अनार निकल रहा है, पर अनार का पहले बोया था वो हम भूल गए, इसलिए वो अनार अभी निकलेगा, अपने समय पर निकलेगा ना। तो अभी जो गलत कोई कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा जरूर, पर अभी उसका जो अच्छा कर्म संचित है वो फल भोग रहा है, थोड़ा सा सुख भोग रहा है। और अगर कोई व्यक्ति इसके विपरीत है, मान लो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत नेक व्यक्ति, बड़ा ईमानदार व्यक्ति, पर कुछ हम देखते हैं कि उसको कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, दुख ही दुख मिल रहा है, तो कहेंगे भगवान ये कैसा न्याय, कितना अच्छा आदमी है और देखो ऐसे कष्ट भोग रहा है। हम कहते हैं नहीं, इस अच्छे कर्म का ये फल नहीं है, जरूर कुछ पूर्व संचित है वो उसका फल है, ये थोड़े समय की बात है, ये जैसे ही पूरा होगा इस अच्छे कर्म का जो संचित हो रहा है ये फल तो उसके साथ जाएगा। सच कहते हैं सत्य की नाव डोलती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। ये हो नहीं सकता कि सत्य की नाव डूबे, इसलिए हम अपने कर्मों को सुधारते जाएं, श्रेष्ठ बनाते जाएं। ये भी नहीं कि सब माया माया समझ करके छोड़ दें, छोड़ना कुछ नहीं है, परंतु क्या है, धन माया नहीं है, धन ये सुखदायी है, लोभ माया है। इसी प्रकार कोई कई स्त्री माया है, कई कहते ना ये स्त्री माया है, माया, हम कहते ये भी गलत है, स्त्री तो शक्ति है, स्त्री माया थोड़ी है, पर उनके प्रति जो काम वासना है या उनके शरीर पर अधिकार है ये माया जरूर है, ये माया है। अधिकार उनके शरीर पर रखना या उनके प्रति वो पोजेसिवनेस जो होता है और वासना की दृष्टि, ये माया जरूर है। इसी प्रकार कोई कहे बच्चे माया, हम कहते नहीं बच्चे तो फूल है, वो तो कितने पवित्र फूल है, परंतु उनके में मोह रखना ये माया जरूर है। तो माया किसको कहते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, ये सब माया के अंतर्गत आता है। तो अभी शिव बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने कर्मों को सुधारो, नहीं तो ये पाप कर्मों की गठरी तुम्हारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब ये पाप कर्मों की गठरी आत्मा अपने साथ नहीं ले जा सकती है, इसको हमें यहीं छोड़नी होगी। तो क्या करना होगा उसके लिए? आत्मा को शुद्ध बनकर के ही घर जाना है। तो कैसे जाएंगे शुद्ध बनकर के घर? इन पाप कर्मों को मुझे यहीं समाप्त करना है तो क्या करना होगा उसके लिए? शिव बाबा ने तीन कदम बताए। ये तीन कदम है अपने पापों को नाश करने के लिए। पहला कदम है राजयोग। ये राजयोग हमारे पापों को नाश करेगा। शिव बाबा के महावाक्य हैं कि हे बच्चे, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। ये शिव बाबा का वायदा है, परंतु शर्त क्या है उसके लिए? तू मुझे याद कर। तो जितना जितना हम शिव बाबा से लगन लगाते जाएंगे, हमारे पाप की गठरी उतरती जाएगी, बोझा खत्म होता जाएगा, आत्मा शुद्ध बनती जाएगी, पावन बनती जाएगी। और दूसरी बात है कि जितने हम सत्कर्म करते जाएंगे, अब सेवा की भावना बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारे पापों की गठरी खत्म होती जाएगी। ये कर्म की गति है। जैसे किसी ने मान लो हत्या की और उसको उम्र कैद मिलती है, पर उम्र कैद भोगने वाला व्यक्ति अगर समझो 18-20 साल उम्र कैद भोग ली, पर है उसकी अभी तक फांसी उसको मिली नहीं है, या उम्र कैदी है उसकी, परंतु वो बहुत बदल गया जेल में, एकदम अच्छा व्यक्ति हो गया, तो 18-20 साल के बाद उसको छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि उसकी सजा कम हो जाती है, क्योंकि बदल गया। तो अगर मेरे सिर पर इतना पापों का बोझा है तो उसको उतारना है, उतने सत्कर्म करो। तो जितने सत्कर्म करते जाएंगे, पापों की गठरी उतरती जाएगी उतरती जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं और उसके लिए एक लक्ष्य रखो कि और आगे कोई पाप कर्म न बने। तो और आगे पाप कर्म न बने उसके लिए क्या हमें पुरुषार्थ करना होगा? समझो तन का रोग है, ये हमारे हिसाब किताब है, उसमें दुखी मत हो जाओ, हाय मैं इतना रोगी हूँ, हाय ये है मुझे, ये रोग है, ये रोग है, दुखी मत हो जाओ। उसके बजाय क्या सोचो, ये तन शिव बाबा का है, मेरा नहीं है, मैं तो एक आत्मा हूँ, आत्मा के ऊपर कोई रोग नहीं है, आत्मा तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, ये तो शरीर का हिसाब किताब है, मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ। तो खुशी खुशी वो तन का जो भी रोग है उसको हम चुक्तु कर रहे हैं, इसीलिए दुख की बात ही नहीं है। तो ये चुक्तु हो रहा है मेरा कोई हिसाब किताब, तो दुखी होके क्यों चुक्तु करे, खुशी खुशी चुक्तु करे, जितना हिसाब किताब है वो तो चुक्तु होगा ही। दूसरा, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है, कोई दुख देने की कोशिश कर रहा है, तो उस समय ही मैं सोचूं ये मेरा हिसाब किताब चुक्तु हो रहा है। अब मेरे सिर पर ऋण है, मान लो किसी का कर्जा लिया है, तो व्यक्ति वो कर्जा वापस लेने आएगा ना, तो मैं उसको रोकूंगी कैसे, वो तो अपना हिसाब किताब लेगा। तो ये कोई कर्जा है उस आत्मा के साथ, वो हिसाब किताब चुकतु हो गया, दुखी नहीं होना है, खुशी खुशी वो हिसाब किताब चुकतु करना है। इसलिए तन का रोग या कोई धन की खींचातानी है या किसी ने कुछ कहा, मानो ये हिसाब किताब चुकतु हो रहे हैं, मैं आत्मा स्वतंत्र हो रही हूँ, मैं आत्मा बंधनों से मुक्त हो रही हूँ, ये अंदर में संकल्प करो तो कोई भी दुख नहीं होगा, ये कर्मों का हिसाब किताब चुकतु हो रहा है। ये ऐसे ही नहीं है, इसका जरूर कोई कारण है, बिना कारण के परिणाम नहीं होता है। तो इसीलिए कारण है जरूर, वो समझ करके हम परिणाम को देख करके दुखी नहीं होते। तो इसीलिए कोई भी बात मेरे सामने आई, हम खुशी खुशी उसको पार करते हुए, इस संसार को ड्रामा देखते हुए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, ये सोच करके हम इस संसार में साक्षी दृष्टा होकर के उसके प्रभाव से दूर रहते हैं। तब हम अपने पापों की गठरी से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। परंतु अगर नहीं किया तो शिव बाबा कहते हैं, याद रखो मैं धर्मराज भी हूं। धर्मराज की सजाएं बड़ी मशहूर है। जो हमने कुछ भी बाकी बचा हुआ पाप का खाता है, वो धर्मराज की सजाओं से चुकतू करके आत्मा को वापस जाना है। जैसे कोई विदेश से भारत में आता है और हशीश, गांजा, चरस, ये सब जो नशीली चीजें हैं मान लो, वो लेकर के आता है तो कस्टम्स में पकड़ा जाता है, उसको देश में आने नहीं देंगे, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है ये नशीले पदार्थ ले आना। और अगर वो पकड़ा जाता है तो चीज तो जाती है, लेकिन साथ साथ जुर्माना कितना भरना पड़ता है, जेल में भी जाना पड़ता है, उसका अखबारों में आ जाता है ना, मीडिया वाले तो पीछे ही पड़े रहते, कोई न्यूज मिले और अखबार में डाले। तो इसीलिए शिव बाबा भी कहते, बच्चे अगर ये पाप की गठरी होगी वो परम धाम में नहीं जा सकेगी, अभी तो वापस घर जाने का समय आ गया है, इसलिए इस गठरी को यही खत्म करो, परम धाम में ये पाप नहीं चलेगा, वहां तो सत्कर्म की गठरी चलेगी। अगर सत्कर्मों की पूंजी साथ में होगी तो धर्मराज भी सलाम करेगा, सम्मान के साथ हम वापस घर जाएंगे। और अगर पाप की गठरी होगी तो वो तो ले लेंगे, लेकिन साथ साथ सजा खाकर हाथ खाली जाना पड़ेगा। तो क्या मंजूर है, हाथ खाली जाना या सत्कर्मों की पूंजी लेकर जाना, क्या चाहेंगे? नेचुरली कौन चाहेगा कि हाथ खाली जाए, क्योंकि पाप की गठरी तो चलेगी नहीं। तो सत्कर्मों की पूंजी अगर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाओ, तन मन धन से सेवा करो, अनेक आत्माओं को सुख दो, दुआएं लो, दुआ दो तो दुआ मिले। तो ये सत्कर्मों की पूंजी आत्मा ले जाएगी और फिर उन सत्कर्मों के आधार से नई सतयुगी सृष्टि में आएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो एक आंख में रखो मुक्ति कि आत्मा को घर जाना है, और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, जीवन में रहते भी मुक्ति का अनुभव जो सतयुगी देवी देवताएं करते हैं। अब ये दोनों हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के आधार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो जब जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा तो ये जन्म तो सुखी होगा ही, पर जन्म जन्म हमारे सफल होंगे। और अगर नहीं किया तो फिर बताए ना, हाथ खाली जाना पड़ेगा। तो पसंद है क्या हाथ खाली जाना? तो क्या करेंगे उसके लिए, बताया 5 खोटे पैसे स्वाहा करो और 1 आना लेकर जाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। दो मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना, पढ़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े न फिर पछताना, पढ़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।